नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूड़ी का ही होता है। तो मरूड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लोव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6वें व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।